सारे दुखों की बात ये अविद्या है। प्रतिति को प्रतिति समझे और प्राप्ति में टिक जाए, दोनों हाथ में लड्डू, इह लोक सुखी नानक परलोक सुहेली। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। लेकिन अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता, और एक बार समझ में आ जाए तो सारी खटपट मिट जाती है। एक होती है प्रतीति, दूसरी होती है प्राप्ति। प्रतीति माया में दिखती है, ये मुझे मिल गया, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, लेकिन जीवन का लेखा चोखा संभालो तो कुछ नहीं। आखिर जो मिला मिला और सब छोड़ दिया, शरीर भी आंच को दिया। प्रतीति थी, मिला कुछ नहीं, मिलने का भास था। जैसे सपने में मिलने का भास होता है, ऐसे यहाँ मिलने का भास हो गया, मुझे इतने मिला, ये मिला, वो मिला, लेकिन जिस शरीर को मिला वो शरीर भी तुम्हारा नहीं, तो मिली हुई चीज तुम कब तक साथ लिए जाओगे। प्रतीति को प्रतीति समझ लो तो उसकी थप्पड़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, थप्पड़ लगेगी नहीं। आसक्ति रूपी अहम होता है, उसको थप्पड़ लगती है, आकाश में थप्पड़ क्या लगेगी। जो आकाश रूप चैतन्य स्वरूप अकाल पुरुष परब्रह्म परमात्मा है, वो प्राप्त है, सदा प्राप्त है। वो प्राप्ति में टिकने की कला, इसका नाम आध्यात्मिकता है। जो प्राप्ति में टिका है उसको प्रतीति के थप्पड़े नहीं लगती, प्रतीति की आसक्ति नहीं होती, वो प्रतीति का मजा लेता है और प्राप्ति में स्थित रहता है। प्राप्ति उसका पौरुष है और प्रतीति उसका प्रारब्ध है। हम लोग गलती ये करते हैं कि प्रतीति को पौरुष समझते हैं और जो प्राप्ति है उसके तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए सब दुखी पाए जाते हैं। सेठ भी दुखी है, नौकर भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है तो पति भी दुखी है। कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन के टेंशन से दुखी है, कोई सत्ता के लिए दुखी है तो कोई सत्ता को संभालने के लिए दुखी है, कोई प्रमोशन के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है तो कोई बदली के लिए दुखी है, कोई शादी के लिए दुखी है तो कोई शादी से दुखी है, कोई बेटे के लिए दुखी है तो कोई बेटे से दुखी है, कोई प्रसिद्धि के लिए दुखी है तो कोई प्रसिद्धि के कारण कहीं जा नहीं सकता दुखी है। छोड़ा भी नहीं जाता, पकड़ा भी नहीं जाता, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या रख दिया जाए, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जो प्रतीति को सत्य समझते हैं उसको तो कबीर की ये उक्ति दिखाई देनी चाहिए। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खीजे तो पैर काटे, खीजे तो पैर काटे और रीझे तो मुंह चाटे। अगर ये प्रतीति में आदमी गरीब है ये वो है तो फिर अंदर से लघु ग्रंथि से दुखी होता है, और अमीरी है तो टेंशन और विलासिता में जीवन पूरा हो जाता है। प्रतीति दोनों तरफ हमको फंसा देती है। इसलिए नानक जी ने कहा, गुरुवाणी में आता है, जैसा अमृत ऐसी बिसखाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। वो प्रतीति से मुक्त हो गया, वो बंधनों से मुक्त हो गया, सुख दुख से मुक्त हो गया, मान अपमान से मुक्त हो गया, और वो जन्म मरण से भी मुक्त हो गया जो प्राप्ति में टिक गया है। अष्टावकर ने कहा जनक को, धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानम न दीक्षते ही, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ताः, न मृतो न च जीवते। जो धीर पुरुष है, जो प्रतीति नहीं प्राप्ति में टिक गया, प्रतीति में बहा नहीं टिक गया है, जो प्राप्ति में तकदे बाजीनु बाजीगरनु कोई नहीं तकदा, बाजी को तो देखते लेकिन बाजीगर को जो नहीं देखते तो वो बाजी में बह जाते हैं। लेकिन जिसकी निगाह बाजीगर पर है वो बाजी देखने का तो मजा लेता है लेकिन बाजी के पीछे भागता नहीं। तुम किसी को न बताओ तो मैं अपनी गलती बता दूं, प्राइवेट बात है। मैं सिद्धपुर में रहता था, करीब 10-11 साल की उम्र रही होगी, रिश्तेदारों ने मेरे को भगत समझकर बड़ी दया की मेरे पर, इस बेचारे को दुनिया का ख्याल नहीं, सारा दिन भक्ति करता रहता है। सिद्धपुर में सिनेमा थिएटर नहीं है तो चलो 15 किलोमीटर दूर ऊंझा में तो है, 10-5 किलोमीटर तो किसी बस से गए थे, 2-4 किलोमीटर रेल की पटड़ियां से पैदल चले थे, और फिर पिक्चर देखी, इतनी महंगी पिक्चर, 5-7 किलोमीटर पैदल जाकर फिर देखने को मिले तो पिक्चर दिखाई, वो आन पिक्चर थी, आन मेरा मेहमान अरे नादान की मैंने तुझसे किया, ये गाना था उसका, तुम किसी को बताना नहीं, हाँ प्राइवेट बात। ऊंझा सिद्धपुर से मैसाणा के बीच में, सिद्धपुर मैसाणा के बीच ऊंझा है गुजरात में, तो हम लोग सिद्धपुर से आए थे, मैं सबसे छोटा था, वो जो कुटुंबी स्नेही सब जवान जवान थे उनमें सब में मैं उनका प्रेम पात्र कहो दया पात्र कहो था। मुझ पर बड़ी दया करके, मैं तो नहीं जाना चाहता था, पटा फुसला के अरे भाई तू देख तो सही, मजा आ जाएगा, ये आ जाएगा, अभी तक मुझे वो याद है। वो फिल्म चली, उसमें नरगिस एक्ट्रेस थी। हम देखते तो फिर पूरा देखते हैं। फिल्म जो थी वो थी, उसका पूरा बयान क्या किया जाए, जब वो हीरो हीरोइन को पकड़कर विरोधी दल के लोग उठाकर ले आए और बदला लेने के लिए प्रतिस्पर्धी से उसको पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया और आसपास में लकड़ कट्ठे कर दिए और डाला केरोसिन और उसको जीते जी जलाने का प्रोग्राम बस हो ही रहा था, तो मेरे पास वाला एक देहाती था, ये तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग जानते हैं, कुछ बैठे भी हैं यहाँ, तो 2-4 कैमरा होते हैं तो आग कहीं लगती है और आदमी कहीं है और दिखाया जा सकता है कि इसके इर्द गिर्द आग लगी, वो सॉल्यूशन किसी पटरियों पर थोड़े फर्नीचर पर सॉल्यूशन लगाकर आग लगाई और दिखाया कि लंका जल रही है, रामायण सीरियल में देखा। तो ऐसे ही उन लोगों ने उस भाई को जलाने का प्रोग्राम किया और बस आग लगा ही रहे थे, तो वो देहाती उठा के अरे रेवा दो, बेचारी स्त्री के साथ क्या वैर बांधना, अबला है, बदला लेना है तो उन बदमाशों से लो, इसको क्यों, अरे छोड़ो। लेकिन फिल्म की तो पट्टी जैसा शूटिंग हुआ ऐसा होता जाता है, केरोसिन भी छांट दिया और उन्होंने आग भी लगा दी, और आग लगा तो महाराज भभुक भभुक आग, और वो चटपटा रही है, बंधी है पेड़ से और उधर आग भभक रही है, पसीना भी दिखाया जा सकता है फिल्म में, वो पसीने से बस अब आग में उसके अंतिम बस श्वास आ रहे, उस देहाती से रहा नहीं गया, 2-4 गालियां दी, हाथ में उसको लकड़े की वो कैंची होती, छोटा मोटा शिकार करने के लिए, घुमा घुमा के दो चार गालियां दिया कि अरे मेरे होते हुए उस अबला को जीता जी जला देते हो, ये सब दांत निकाल कर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, देख रहे हैं, इनको तो शर्म नहीं, लेकिन मैं मर्द चुप कैसे रह सकता हूँ। धड़ाक दुम उस गुंडे की गर्दन पे दे मारा हथियार, महाराज पर्दा टूट गया, हाहाकार हो गया। और वो देहाती व्यक्ति पहली बार आया होगा, हमारे जैसा ही था ग्राहक, हो वो कुर्सी पे कुर्सी लगा कर खड़ा हो गया कि आ भाईड़ा है, इस मर्द ने सबको भगा दिया, एक नारी की जान बचा दी। तुमको हंसी आती है क्योंकि तुम प्रतीति को प्रतीति समझते हो, लेकिन वो प्रतीति को प्राप्ति समझते थे। तुम फिल्म को फिल्म समझते हो और वो फिल्म को सच्चा समझते। जैसे तुम फिल्म को फिल्म समझते हैं और वो फिल्म को सच्चा समझता तो उस पर तुमको हंसी आती है, ऐसे जिन ब्रह्म ज्ञानियों ने संसार की फिल्म को फिल्म समझा है उन महापुरुषों को तुम पर भी ऐसी हंसी आती होगी। नारायण नारायण नारायण। ये जो कुछ दिख रहा है, नानक जी ने कहा जो दिखे सो चालन हार, लपट रहो सो अंध अंधार। शास्त्र कहता है यद दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखता है वो अनित्य है, लेकिन नित्य का ज्ञान नहीं, इसलिए अनित्य को पकड़ देते रहते हैं। अनित्य मिलता है तो अहंकार आ जाता है, और अनित्य में कुछ उथल पाथल तो होनी है। अब इसको मैं कितना भी संभाल के रखूं, लेकिन जहां से आया है ये हार वहीं जाएगा। दो दिन पहले एक किसान का माल था, एक दिन पहले माली का माल था, दो घंटे पहले तुम्हारी माला थी, अभी ये हमारी माला। हम किसी को दे दें उनकी माला, लेकिन माला पांच भूतों की उधर ही जा रही है, इसका जल जल भाग में जा रहा है, गंध गंध के तरफ जा रही है। ऐसे व्यक्ति रूपी फूल, समाज रूपी माला, जिस पांच भूतों से आई उधर को जा रही है। लड़का पैदा हुआ, माँ बोलती है मेरा बेटा, बाप बोलता है मेरा पुत्र है, कोई बोलता है मेरा भैया, कोई बोलता है मेरा मामा, कोई बोलता है मेरा भांजा, बड़ा हुआ कोई बोलता है मेरा दोस्त, कोई बोलता है मेरा दुश्मन, कोई बोलता है मेरा क्लास फेलो है, कोई बोलता है मेरा सर्विस का साथी है, कोई बोलता है मेरे पार्टी का है, और बड़ा हुआ कोई बोलता है मेरा ससुरा है, कोई बोलता है मेरा काका ससुरा है। जब मर जाता है तो किसी का काका मरा, किसी का काका ससुरा मरा, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, व्यक्ति तो एक होता है, संबंध जिसके जैसे होते हैं प्रतीति के, उनको ऐसा ऐसा सुख दुख होता है। ईश्वर की सृष्टि में तो पांच भूतों से पैदा हुआ और पांच भूतों के तरफ चलता था, चलते चलते उसका चलना पूरा हो गया। आदमी कब मरा? बोले अब भी मरा नहीं, जब से जन्मा तभी से मरना उसका शुरू हुआ, श्वासोश्वास खर्च होते होते आज उसका मरना पूरा हो गया। तालाब सूख गया, बरसाती तालाब कब सूखा? अबावा अब भी सूखा, अब भी नहीं सूखा, जब से भरा था तब से बाष्पीभूत होते 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 अभी सूखना उसका पूरा हो गया। तो ये शरीर प्रतीत हो रहा है, ये मैं हूं, ये मेरा मकान है, ये प्रतीत हो रहा है, ये मेरा फलाना है, ये प्रतीत हो रहा है, और बार बार इसका रिपीटेशन होते हुए यही सत्य दिख रहा है। जिसकी सत्ता से दिख रहा है वो ओझल हो गया। सारे दुखों की कहा बात ये अविद्या है। अभी तो युग ऐसा आया वैसा आया, फलाना ढींगड़ा पाश्चात्य कल्चर की गंदगी बढ़ गई, हमारा नैतिक मूल्य आदि बिखर गए, ये तो घाटा ही है। लेकिन सतयुग में भी वे ही लोग सफल हो गए जिन्होंने प्रतीति को प्रतीति समझा और प्राप्ति में टिके। द्वापर में भी वही लोग सुखी रहे, त्रेता में भी वही सुखी रहे। कंस प्रतीति में उलझा है, रावण प्रतीति में उलझा है, राम और श्री कृष्ण प्राप्ति में टिके हैं, तो भगवान पूजे जाते हैं, और रावण हर बारह महीने दे दिया सलाई, हर बारह महीने दे दिया सलाई। क्यों? प्राप्ति को प्रतीति को प्राप्ति समझते हैं, और प्रतीति की चीजें देने वाला ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला समझता कि हमारी है, देने वाला ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला समझता हमारी है अथवा मैं ही हूं, देने वाले ने तन ऐसे दिया कि लेने वाला समझता कि तन ही मैं हूं। अब ये तन ये बॉडी तुम होते तो महाराज तुम तो सदा रहना चाहते, बॉडी सदा नहीं रहती। बॉडी तुम्हारी भी नहीं, अगर तुम्हारी होती तो तुम्हारे कहने में चलती, तुम नहीं चाहते झुर्रियां पड़ जाए, छपड़ा सफेद हो जाए, तुम नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। तो ये प्रतीति की चीजें हैं, प्रतीति की चीजों में परिवर्तन स्वाभाविक है, प्रतीति की चीजों में परिवर्तन अवश्यम भावी है, प्रतीति की चीजों में वियोग पक्का है। ऐसा समझ कर इसका उपयोग करेगा तो उसे तसल्ली रहेगी। एकाएक लाइट चली जाती, अरे लाइट गई, अरे अंधेरा हो गया लाइट गई, लेकिन इतना बड़ा लाइट का है, सूर्य का है बड़ा, इतना रोज का रोज सूर्यास्त हो जाता है, इतना बड़ा लाइटा चला जाता है, अरे सूरज डूब गया नहीं बोलते, क्योंकि पता है रोज डूबता है रोज सूरज ढलता है, पता है तो संतोष है। ऐसे ही प्रतीति को परिवर्तन होना है, वियोग होना है, ये पता हो तो फिर चोट नहीं लगेगी, सदुपयोग करने का साहस हो जाएगा। प्रतीति को प्रतीति समझे और प्राप्ति में टिक जाए, दोनों हाथ में लड्डू, यह लोक सुखी नानक परलोक सुहेली। अगर प्रतीति को प्राप्ति समझते तो पांच क्लेश सहने पड़ते और उसके विस्तार आइटम बहुत हैं। जैसे भय शब्द एक है और 5028 किस्म है उस भय के, ठीक इसी प्रकार क्लेश तो पांच हैं शास्त्रीय भाषा से, लेकिन उसकी वैरायटियां बहुत है। तो पांच क्लेश कौन से? अविद्या, जो प्रतीति है अविद्यमान है उसको विद्यमान मानते हैं, और जो विद्यमान है उसका पता नहीं, इसका नाम अज्ञान, अविद्या, शास्त्रीय भाषा में वेदांत में चल रहे हैं। अविद्या के बाद फिर अस्मिता होती है, प्रतीति के शरीर को मैं मानते हैं और मैं क्या हूं उसका पता ही नहीं लगता। वास्तव में उसका पता लगाने की बुद्धि मनुष्य जन्म में मिलती है। बच्चा जो ही समझदार होता है, ये क्या है बेटा? ये लाइट है। ये लाइट है तो ये क्या है बेटा? ये ट्यूबलाइट है। अच्छा, ये ट्यूबलाइट है, वहाँ ये क्या? बोले पंखा है, पंथा है, ये चिलिया है, ये क्या है? ये तबूतर, माँ ये क्या? वो माँ से पूछेगा, बाप से पूछेगा, जो उसको गोद में लेके घूमेगा उसको पूछेगा, वो पूछने वाला थकता नहीं, बताने वाला थक जाता है। क्यों? कि जिज्ञासा है उसको, ये क्या वो क्या। ये बच्चा पूछता है मैं क्या हूं, ये पूछे उसके पहले उसके ऊपर नाम रख देते, तेरा नाम गोबर गणेश, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, ऐसा ज्ञान उसको मिलता ही नहीं। तो जो नाम रख दिया मोहन सोहन इकबाल ये वो, अपने को वही मानता है। तो प्रतीति ढक, प्रतीति ऐसी विकसित हो गई कि जिसके आधार से प्रतीति जी रही है उस आधार को ही हम भूल गए। जैसे जल के आधार पर सेवाल होती है, लील होती है और जल को ही ढकती है, ऐसे ही प्राप्ति रूप आत्मा के आधार पर प्रकृति रूपी प्रतीति दिखती है। तुलसीदास ने कहा, जासु सत्य ताते कर जड़ माया, जिस सत्य स्वरूप उस परमेश्वर जो रोम रोम में रम रहा है उसको राम कहते हैं, जिसको काल खा नहीं सकता, काल की असर प्रतीति पर होती है प्राप्ति पर नहीं होती। प्रकृति की वस्तुओं पर काल की समय की असर होती है, लेकिन परमात्मा पर आत्मा पर मुझ पर या तुम पर नहीं होती। लेकिन हमने अपने को जाना नहीं, तुमने अपने को जाना नहीं, तो जो प्रतीति का खोखा मिल गया उसी को मैं मान लिया। उर्दू भाषा में तुम खुद लिखो, खुदा लिखो अथवा जुदा लिखो, शब्द वही होंगे, केवल नुक्ते की हेर फेर होगी। जुदा लिखो पंजाबी लोग जानते हैं, सिंधी लोग भी जानते हैं। जुदा लिखना हो तो नुक्ता टपकी नीचे कर दो, और वही टपकी अगर ऊपर कर देते हो तो खुदा बन जाता है। नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हो गया। एक सूफी फकीर हुए निश्चल दास जी महाराज, उसके पास एक सैयद आया, गुरु महाराज मैनू सत्य का मार्ग दसो, मैं आप दी शरण आया सी। निश्चल दास महाराज प्याज का धरू बो रहे थे, प्याज के बीज बोकर फिर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाने होते। उस पहुंचे हुए निश्चल दास फकीर ने कहा, सत्य का मार्ग दसा ये कोई कठिन बात थोड़ी है, ओ इत्था उठ, इत्थे खड़े, इत्था खड़े, इत्थे रख, इत्था पट्टे, इत्था गिन्ने, इत्थे रख। जैसे प्याज के धरो अथवा चावल के धरो छोड़ यहां से उठाकर यहां रोक दे बस, ऐसी प्रतीति को मैं मानने को हटाकर जहां से मैं निकलता वहीं मैं मानना शुरू कर दे, ये सत्य का मार्ग कठिन थोड़े है लेकिन अटपटा है, झटपट में समझ में नहीं आता, और एक बार समझ में आ जाए तो सारी खटपट मिट जाती है। शास्त्र कहता है स्नातम तेन सर्वतीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सारे हज कर लिए, सारे मत पंत मजहब सारे पूज लिए कर लिया सब। स्नातम तेन सर्वतीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम तेन सर्वयज्ञम येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। जो एक क्षण के लिए उस प्राप्ति रूपी ब्रह्म परमात्मा में मन को स्थिर कर दिया उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे मक्का मदीना ये वो सारे भेंट लिए। एक सूफी फकीर बैठा था अपनी छोटी मोटी परण कुटीर के बाहर, लोग जा रहे थे हज करने को, बुलाया कहाँ जा रहे, बोले हज करने जा रहा। फकीर ने कहा हज करना है, आओ मैं करा देता हूँ। फकीर पहुंचा हुआ था, निगाहों से प्राप्ति की मस्ती बह रही थी, बोले करो प्रदक्षिणा मुझे। प्रदक्षिणा की लोगों ने, बड़ी खुशी मिली। फकीर ने कहा हो गया तुम्हारा हज, अब जाओ। बोले ऐसे हज क्या? हाँ हो गया हज, अब भीतर जाओ बैठो, और दोबारा अगले साल या दूसरे साल मेरे पास भी नहीं आना, तुम जहां हो वहीं गोता मारना, वहीं हजों का हज रहेगा, तीर्थों का तीर्थ रहेगा। बिछुड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। ए पान मसाला तू सुख दे दे, ए वाइन तू सुख दे दे, हे डिस्को तू सुख दे, सुख के लिए भटक भटक के थक गए, आखिर देखो तो दुखी के दुखी। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। अष्टावक्र कहते हैं धीरो न द्वेष्टि संसारम, अष्टावक्र संहिता का श्लोक है ये, धीरो न द्वेष्टि संसारम। जो धीर पुरुष है, जो प्राप्ति में टिक गया है, वो संसार की किसी परिस्थिति से अंतःकरण पूर्वक द्वेष नहीं करता। धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मनम न दीक्षति, वो आत्मा परमात्मा को चाहता भी नहीं है। सबसे ऊंची चीज तो आत्मा है, परमात्मा है, धरती की तो चीज की क्या बात करो, स्वर्ग के राज्य के आगे धरती के दो पैसे की भी कीमत नहीं, धरती के राज्य की। वो स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता, और आत्म राज्य के आगे स्वर्ग का राज्य भी दो पैसे का नहीं, परमात्मा पद के आगे स्वर्ग का पद भी कुछ नहीं, इंद्र के पद के आगे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो कुछ नहीं। तो सबसे ऊंचा राज्य है आत्मा का, लेकिन उस आत्म राज्य को भी धीर पुरुष नहीं चाहता। धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मनम न दीक्षति, वो आत्मा को नहीं चाहता, क्योंकि अब उसका आत्मा परमात्मा दूर नहीं है, पराया नहीं है। चाह दूर में होती है, पराये में होती है। मैं अमुक महाराज का तो दर्शन करना चाहता हूं, चाहूंगा, लेकिन आशाराम महाराज का दर्शन करने की मेरी कभी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मैं स्वयं हूं। ऐसे जो स्वयं प्रतीति में प्रतीति बुद्धि जगा चुका है और प्राप्ति में जो टिक गया है, वो आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहता, वो आत्मा परमात्मा में स्वयं टिका है। धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मनम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष, हर्ष का समय हो चाहे शोक का, अमहर्ष का हो, मौत का समय हो चाहे जिंदगी का हो, वो हर्ष के समय हर्षित नहीं, शोक के समय शोक नहीं, मरने के समय वो मरता नहीं, और जीवन के समय वो अपना जीवन मानता नहीं, शरीर के जीवन को अपना जीवन मानता नहीं, और शरीर की मौत को अपनी मौत मानता नहीं। सुकरात जहर का प्याला खुशी से पी रहे मानो शरबत, मित्र रो रहे हैं चीख रहे हैं अब तुम मरोगे, बोले पागल मैं मरूंगा, मौत ने कमर तक का कब्जा ले लिया, अब नाभि तक आ गई, हृदय तक मौत का असर है, लेकिन इस शरीर की मौत हो रही है, इसकी मौत हो रही, मेरी कभी मौत नहीं होती, इसकी मौत में देख रहा हूं। जो मौत को देखता है मौत का साक्षी होता है, जो प्रतीति को देखता है वो प्रतीति का साक्षी होता है।